एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके घरों में, हमारी रसोई में मौजूद है, लेकिन जिसका इतिहास, वो कहानी बिल्कुल अलग है, दुनिया को बदलने वाली कहानी।
बिल्कुल सही कहा, इतनी आम सी चीज है कि हम शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं ना।
हाँ बिल्कुल।
लेकिन आज हम बात करेंगे मार्क कुरलांस्की की एक गजब की किताब सॉल्ट अ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, यानी नमक एक विश्व इतिहास। और ये किताब दिखाती है कि कैसे इस साधारण से दिखने वाले सफेद क्रिस्टल ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया।
नमक, सोचिए जरा, कितना मामूली लगता है, पर कुरलांस्की बताते हैं कि कैसे इसी नमक ने साम्राज्य खड़े किए और तबाह भी कर दिए।
हाँ,
कैसे इसकी वजह से लड़ाइयां लड़ी गईं, व्यापार के रास्ते खुले, यहां तक कि हमारी जुबान और संस्कृति पर भी इसकी गहरी छाप है। तो आज हम इसी अनदेखे लेकिन बेहद ताकतवर इतिहास की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं, शुरू करें?
हाँ हाँ जरूर, चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं लेखक की, मार्क कुरलांस्की। ये कोई मतलब टिपिकल इतिहासकार नहीं है,
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो एक अमेरिकी पत्रकार हैं और लेखक हैं, और उन्हें महारत हासिल है जिसे माइक्रो हिस्ट्री कहते हैं,
हाँ
यानी किसी एक छोटी सी रोजमर्रा की चीज के जरिए इतिहास की बड़ी तस्वीर दिखाना।
हाँ जैसे उनकी एक और मशहूर किताब थी कॉड मछली पर।
हाँ, कॉड, उस मछली का जीवन जिसने दुनिया बदल दी,
हाँ
वो भी
हाँ
बहुत चली थी।
बिल्कुल। कुरलांस्की में एक पत्रकार वाली वो जिज्ञासा है, वो चीजों की तह तक जाते हैं, और उनकी खूबी यह है कि वो भारी भरकम जानकारी को भी एक दिलचस्प कहानी की तरह पेश करते हैं।
सही।
उन्होंने दुनिया भर में, खासकर यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में एक विदेशी संवाददाता के तौर पर काम किया है, जिससे उन्हें एक ग्लोबल नजरिया मिला है, और नमक जैसी चीज के वैश्विक इतिहास को समझने के लिए ये नजरिया बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, उनकी खासियत यही है कि वो सिर्फ तारीखें और घटनाएं नहीं गिनाते, वो भूविज्ञान, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, इन सबको मिलाकर एक बड़ी जुड़ी हुई कहानी बुनते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि ये दिखाते हैं कि कैसे हमारी रोज की चीजें, जैसे नमक, इतिहास की बड़ी ताकतों और घटनाओं से जुड़ी हैं। उनका मकसद है इतिहास को सिर्फ राजा रानियों की कहानी से निकालकर एक तरह से हमारी रसोई तक लाना।
तो फिर इस किताब का निचोड़ क्या है? ये कहना क्या चाहती है ये किताब?
ये किताब कहती है कि नमक सिर्फ खाने में स्वाद या अचार को सड़ने से बचाने वाली चीज नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। कुरलांस्की का मुख्य तर्क ये है कि नमक मानव सभ्यता के विकास के पीछे एक बुनियादी, मौलिक और जबरदस्त ताकत रहा है। मतलब सभ्यता की नींव में नमक का बड़ा हाथ है।
सही कहा। किताब का केंद्रीय विचार ये है कि देखो, इंसान को जिंदा रहने के लिए नमक चाहिए, ये तो ठीक है, पर उससे भी ज्यादा अहम थी भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की जरूरत।
हाँ ये बात तो है।
और पुराने जमाने में ये काम नमक करता था। इसी जरूरत ने इंसानों को नई जगहों की खोज करने पर मजबूर किया, व्यापार के नए रास्ते बनवाए, लड़ाइयों के लिए पैसा जुटाया, यहां तक कि क्रांतियों की चिंगारी भी भड़काई।
अच्छा,
इसी नमक ने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए और मिटाए भी, और हमारी संस्कृति और धर्म में गहरे प्रतीक भी छोड़े। कुरलांस्की असल में पूछ रहे हैं कैसे सोडियम क्लोराइड जैसा एक आम केमिकल इतिहास की सबसे प्रभावशाली चीजों में से एक बन गया।
और ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। कुरलांस्की हमें लगभग 5000 साल लंबे सफर पर ले जाते हैं।
हाँ, बहुत लंबा सफर है।
प्राचीन चीन और मिस्र से शुरू होकर रोमन साम्राज्य, मध्ययुगीन यूरोप, फिर अमेरिका की खोज, औद्योगिक क्रांति और आज के दौर तक। ये किताब सिर्फ इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो ये जानना चाहता है कि हमारी आज की दुनिया ऐसी क्यों है।
तो चलिए इस कहानी के कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्राचीन दुनिया में। शरीर को नमक क्यों चाहिए, ये तो खैर विज्ञान बताता है,
हाँ वो तो है।
लेकिन पुराने जमाने में लोग इसे हासिल कैसे करते थे, ये सवाल अहम है।
हाँ ये बुनियादी सवाल है। इसे चट्टानों से खोदा भी जाता था और समुद्र का पानी सुखाकर भी बनाया जाता था, और यहीं से चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। प्राचीन चीन को देखिए।
चीन, हाँ,
उन्होंने नमक निकालने की गजब की तकनीकें विकसित की, जैसे बांस की पाइपलाइन से नमकीन पानी को दूर तक ले जाना। सोचिए।
हाँ, और सबसे बड़ी बात, चीन ने शायद दुनिया में पहली बार नमक पर सरकारी एकाधिकार, मतलब मोनोपोली कायम किया। सोचिए, सरकार तय करती थी कि नमक कौन बनाएगा, कौन बेचेगा और किस दाम पर।
अरे वाह,
इससे जो पैसा आता था वो जबरदस्त था। कहा जाता है कि चीन की महान दीवार बनाने और बड़ी बड़ी सेनाएं रखने का खर्चा काफी हद तक इसी नमक के टैक्स से निकलता था।
कमाल है।
ये एक पैटर्न है जो बार बार दिखता है। जिसने नमक को कंट्रोल किया उसने सत्ता को कंट्रोल किया, सीधी सी बात।
वाओ, और रोम में सुना है सैलरी शब्द का नमक से कुछ लेना देना है, ये सच है क्या?
हाँ, ये दिलचस्प है। रोमनों के लिए नमक बहुत जरूरी था, खासकर अपनी सेना के लिए।
अच्छा।
उनकी एक मशहूर सड़क थी विया सेलारिया, यानी नमक वाली सड़क, जो नमक को तट से रोम तक लाती थी। और सैलरी शब्द, हाँ, वो लैटिन के साल साल यानी नमक से निकला है। ये वो भत्ता होता था जो सैनिकों को मिलता था ताकि वो अपना नमक खरीद सकें। शायद सीधे नमक में पेमेंट न होती हो, पर रिश्ता जरूर है।
दिलचस्प। और समुद्री यात्राओं पर इसका क्या असर पड़ा, खाने पीने के लिहाज से?
अरे, ये तो एक क्रांति थी। मछली, खासकर कॉड और हेरिंग को नमक लगाकर सुखाने की तकनीक ने सब कुछ बदल दिया।
अच्छा, कैसे?
अब आपके पास ऐसा खाना था जो महीनों खराब नहीं होता था, प्रोटीन से भरपूर। इसी वजह से वाइकिंग्स जैसी समुद्री कौमें अटलांटिक पार करने की हिम्मत कर पाई। सोचिए, बिना खाने की चिंता के लंबी समुद्री यात्राएं।
हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी।
नमकीन मछली यूरोप की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन गई और इसने खोज यात्राओं के युग, एज ऑफ डिस्कवरी को मुमकिन बनाया। ये दिखाता है कि एक साधारण तकनीक कैसे दुनिया बदल सकती है।
तो ये नमक व्यापार का जरिया भी बना और सत्ता का भी। मध्य युग में क्या हुआ, क्या तब नमक की अहमियत और बढ़ी?
हाँ, मध्य युग और शुरुआती आधुनिक काल को तो नमक का स्वर्ण युग कह सकते हैं।
स्वर्ण युग?
हाँ, इसकी आर्थिक और राजनैतिक ताकत चरम पर थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वेनिस शहर। उनके पास कोई खास प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने भूमध्य सागर में नमक के व्यापार पर लगभग कब्जा कर लिया।
कब्जा मतलब?
कहते हैं वो अपने प्रतिद्वंद्वियों के नमक बनाने के ठिकाने तक नष्ट कर देते थे, इतनी जबरदस्त पकड़ थी।
और इस पैसे का उन्होंने क्या किया?
इसी पैसे से वेनिस ने अपनी ताकतवर नौसेना बनाई और वो कला और संस्कृति का एक शानदार केंद्र बन गया। पूरी सल्तनत एक तरह से नमक के बुनियाद पर खड़ी थी। वहीं उत्तरी यूरोप में हंसियाटिक लीग नाम के व्यापारी शहरों के संगठन ने नमकीन हेरिंग मछली के व्यापार से खूब दौलत कमाई।
और फ्रांस का वो बदनाम गैबेल टैक्स, उसके बारे में क्या खास था? बहुत सुना है इसके बारे में।
गैबेल, हाँ, वो फ्रांस का नमक टैक्स था और ये बहुत ही अन्यायपूर्ण माना जाता था।
क्यों?
14वीं सदी में शुरू हुआ ये टैक्स हर इलाके में अलग था और इसे बड़ी सख्ती से वसूला जाता था। लोगों को सरकार से महंगा नमक खरीदने पर मजबूर किया जाता था, चाहे जरूरत हो या ना हो। ये शाही जुल्म का प्रतीक बन गया। कुरलांस्की का तर्क है कि इस टैक्स के खिलाफ जो गुस्सा जमा हुआ वो फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में से एक था। सोचिए, नमक पर टैक्स क्रांति ला सकता है।
ये तो कमाल है, मतलब एक आम जरूरत की चीज इतना बड़ा मुद्दा बन गई।
बिल्कुल।
फिर जब यूरोपीय अमेरिका पहुंचे तब नमक की क्या भूमिका रही, वहां भी इतना जरूरी था?
हाँ, अमेरिका में भी नमक सोना चांदी जितना ही कीमती साबित हुआ। नई बस्तियां बसाने, मछलियों को यूरोप भेजने के लिए संरक्षित करने, जानवरों के खालों को तैयार करने, हर चीज के लिए नमक चाहिए था।
अच्छा।
कैरेबियन के नमक के तालाबों से लेकर अंदरूनी इलाकों की सॉल्ट लिक्स, जहां जानवर नमक चाटते थे, तक ये नई दुनिया में जीवन और व्यापार की धुरी बन गई। यहाँ भी नमक का नियंत्रण सत्ता की लड़ाई का हिस्सा था, जाहिर है।
अब आते हैं आधुनिक युग पर। अमेरिकी क्रांति में भी नमक का जिक्र है।
ये
कैसे?
हाँ, अक्सर ये बात नजरअंदाज कर दी जाती है। अंग्रेजों ने अपनी नौसेना से अमेरिका की नमक सप्लाई रोक दी थी।
ओहो।
जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना के लिए मांस और मछली को बचाकर रखना मुश्किल हो गया था। नमक की कमी एक बड़ी सामरिक चुनौती थी, तो अमेरिका की आजादी की लड़ाई एक तरह से नमक हासिल करने की लड़ाई भी बन गई।
वाह, ये पहलू तो सोचा ही नहीं था। और औद्योगिक क्रांति ने क्या बदला?
औद्योगिक क्रांति ने नमक की कहानी पूरी तरह पलट दी। जमीन के नीचे नमक के बड़े बड़े भंडार मिले।
अच्छा।
हाँ, और खुदाई और पानी सुखाने की नई तकनीकें आईं, जैसे वैक्यूम पैन। इससे नमक, जो कभी कीमती चीज थी, वो सस्ता औद्योगिक कच्चा माल बन गया।
मतलब आम हो गया।
बिल्कुल। बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, जैसे मॉर्टन सॉल्ट। उनका मशहूर नारा याद है, When it rains, it pours, यानी बारिश में भी जमता नहीं।
हाँ हाँ सुना है।
ये असल में नमक में एक केमिकल मिलाने की तकनीक का विज्ञापन था।
अच्छा, ये बात थी। और फिर आता है वो ऐतिहासिक पल, गांधी जी का नमक मार्च।
बिल्कुल, 1930 का दांडी मार्च। ब्रिटिश राज ने भारत में नमक बनाने और बेचने पर अपना एकाधिकार जमा रखा था और भारी टैक्स लगा रखा था।
गांधी जी ने इसके विरोध में साबरमती से दांडी तक 240 मील पैदल यात्रा की और समुद्र किनारे खुद नमक बनाकर कानून तोड़ा।
ये सविनय अवज्ञा का एक अद्भुत उदाहरण था।
हाँ, बहुत शक्तिशाली प्रतीक था वो।
एक मुट्ठी नमक आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये दिखाता है कि कैसे एक रोजमर्रा की जरूरत की चीज को राजनीतिक विरोध का कितना शक्तिशाली हथियार बनाया जा सकता है।
और कहानी का अंत कैसे होता है, नमक के साम्राज्य का पतन? ये थोड़ा अजीब लगता सुनना।
हाँ, एक तरह से पता नहीं कह सकते। 20वीं सदी में रेफ्रिजरेशन और कैनिंग जैसी तकनीकें आईं।
हाँ, फ्रिज आ गए।
अब खाना सुरक्षित रखने के लिए नमक की जरूरत उतनी नहीं रही। वो सफेद सोना जिसके लिए सदियों लड़ाइयां हुई अचानक बहुत सस्ता हो गया। और लगभग उसी समय डॉक्टरों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ज्यादा नमक खाना सेहत के लिए ठीक नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है।
ये तो बड़ी विडंबना है, जो चीज जीवन के लिए जरूरी थी वो विलन बन गई।
यही कुरलांस्की दिखाते हैं, कैसे तकनीक और विज्ञान हमारी सोच और चीजों की अहमियत को पूरी तरह बदल सकते हैं। कमाल की बात है।
तो इस पूरी जबरदस्त कहानी से कुछ खास बातें या सबक क्या निकलते हैं, मतलब निचोड़ क्या है? सबसे पहली बात तो मेरे दिमाग में यही आती है कि भोजन को सुरक्षित रखने की क्षमता, ये किसी भी सभ्यता के टिके रहने के लिए कितनी जरूरी है।
हाँ बिल्कुल।
और फ्रिज आने से पहले ये काम नमक करता था। शहरों का बसना, सेनाओं का टिकना, लंबी यात्राएं, ये सब नमक के बिना शायद मुमकिन ही नहीं होता।
बिल्कुल। और दूसरा अहम सबक है संसाधन पर नियंत्रण का। जिसने नमक पर कंट्रोल किया उसने दौलत और ताकत पर कंट्रोल किया, चाहे वो चीन हो, वेनिस हो या ब्रिटिश राज।
हाँ, ये बात तो साफ है।
ये बात आज भी उतनी ही सच है, बस संसाधन बदल गए हैं। आज हम तेल, पानी, डेटा, लिथियम या चिप्स के नियंत्रण की बात करते हैं। नमक का इतिहास हमें आज के जियोपॉलिटिक्स को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है ना?
बिल्कुल। तीसरा, ये के बुनियादी जरूरतों पर चोट अक्सर बड़े बदलाव लाती है। फ्रांस का गैबल टैक्स हो या भारत में नमक कानून, जब सरकारें लोगों की रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर बोझ डालती हैं तो विरोध की चिंगारी भड़क सकती है।
हाँ,
गांधी जी ने दिखाया कि इसी जरूरत को आजादी का प्रतीक कैसे बनाया जा सकता है।
हाँ, और चौथा सबक तकनीक से जुड़ा है। नमक हासिल करने की तकनीकें बेहतर होती गईं, लेकिन नमक खुद भी एक तकनीक था जिसने मछली को टिकाऊ बनाकर समुद्री खोजों का युग शुरू किया।
सही कहा।
कभी कभी सबसे साधारण लगने वाली चीजें सबसे बड़ा बदलाव लाती हैं। क्या आज भी हम ऐसी किसी साधारण तकनीक को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।
और पांचवा, वो आधुनिक विरोधाभास, कीमती सफेद सोने से सस्ता और फिर सेहत के लिए खतरा। ये याद दिलाता है कि वैज्ञानिक सत्य भी वक्त के साथ बदल सकता है।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है।
हमें आज की स्वास्थ्य सलाहों को भी शायद थोड़े खुले दिमाग से देखना चाहिए।
किताब में कुछ विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे कुरलांस्की का ये कहना कि इतिहास में ज्यादातर समय नमक की खोज ही इंसानी कोशिशों का मुख्य चालक थी। इस पर नियंत्रण जीवन पर नियंत्रण था। ये नमक को सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि सभ्यता की मोटर की तरह दिखाता है।
हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। और ये वाला भी, नमक का इतिहास राजकीय शक्ति का इतिहास। सरकारों ने अक्सर नमक पर एकाधिकार करके ही लोगों पर टैक्स लगाया। ये कितना सीधा और सच्चा लगता है।
बिल्कुल, क्योंकि सबको नमक चाहिए तो सरकार के लिए टैक्स वसूलने का ये सबसे आसान तरीका था। एक और जबरदस्त बात, रेफ्रिजरेशन के आविष्कार के साथ जो चीज कभी सोने जितनी कीमती थी वो डॉक्टरों की चेतावनी वाली सस्ती चीज बन गई। ये दिखाता है कि कैसे एक आविष्कार हजारों साल के संघर्ष को खत्म कर सकता है और चीजों का मतलब पूरी तरह बदल सकता है। कितनी बड़ी विडंबना है।
और वो सबसे सरल तथ्य, नमक एकमात्र चट्टान है जिसे इंसान सीधा खाता है। ये बात अपने आप में अनोखी है और प्रकृति के साथ हमारे अजीब रिश्ते को दिखाती है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है, हम इससे क्या सीख सकते हैं?
सबसे पहली बात तो यही कि अब शायद हम किचन में रखे नमक के डिब्बे को वैसे न देख पाए जैसे पहले देखते थे, है ना?
हाँ, ये तो पक्का है।
ये किताब हमें उकसाती है कि हम अपनी रोजमर्रा की चीजों में छिपे इतिहास को देखें। आपकी चाय की प्याली, चीनी का डब्बा, इनमें भी तो कोई कहानी छिपी होगी।
दूसरा, ये हमें आज दुनिया में चल रहे संसाधनों के झगड़ों को समझने में मदद करती है। नमक पर कब्जे की जो रणनीतियां थीं, एकाधिकार, टैक्स, व्यापार मार्गों पर कंट्रोल, वैसी ही रणनीतियां आज तेल, पानी, जरूरी खनिजों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं।
हाँ, पैटर्न वही है।
इतिहास खुद को दोहराता है, पैटर्न वही रहते हैं।
तीसरा, टैक्स के बारे में सोचने का नजरिया। गैबल का किस्सा याद दिलाता है कि जब जरूरी चीजों पर टैक्स का बोझ बढ़ता है तो क्या हो सकता है। ये सरकारों और नागरिकों दोनों के लिए सोचने वाली बात है।
हाँ, और चौथा, स्वास्थ्य और विज्ञान पर आलोचनात्मक नजर रखना। नमक का हीरो से विलेन बनना हमें सिखाता है कि वैज्ञानिक सलाहें भी बदल सकती हैं। हमें आंख बंद करके हर बात मान लेने की बजाय थोड़ा सवाल करना चाहिए, खासकर खान पान के मामले में।
और पांचवा, प्रतीक की ताकत। गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक को आजादी का प्रतीक बना दिया। ये दिखाता है कि किसी अन्याय के खिलाफ लड़ाई में सही प्रतीक चुनना कितना असरदार हो सकता है। ये सामाजिक आंदोलनों से लेकर आज की ब्रांडिंग तक हर जगह लागू होता है।
तो अंत में इस पूरी चर्चा से हमने व्यक्तिगत तौर पर क्या सीखा? मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि दुनिया कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है, कैसे एक मुट्ठी नमक में भूविज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्म सब कुछ समाया हुआ है। इतिहास टुकड़ों में नहीं बल्कि एक बड़ी जुड़ी हुई कहानी है।
और मेरे लिए शायद सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि नमक जैसी साधारण चीज का असर इतना गहरा और इतना फैला हुआ हो सकता है। या फिर हाँ, गांधी जी ने कैसे इतनी मामूली चीज को इतने शक्तिशाली राजनीतिक हथियार में बदल दिया, ये वाकई कमाल है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि बड़ी कहानियां अक्सर छोटी चीजों में छिपी होती हैं।
तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ विदा लेते हैं। आज हमारे आसपास ऐसी कौन सी साधारण चीज है जिसका ऐसा ही अनदेखा शक्तिशाली इतिहास हो सकता है जिसे हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।